वो पूछता है कि क्यों भागे थे उन्हें। बोले माँ ने डांट दिया था, बहुत तेज डांट दिया था तो मैं भाग गया था घर से। बोले पागल, माँ ने डांट दिया और तू घर से भाग गया? वापस चले जा घर, माँ वो तुझे माफ कर देंगे और फिर तू भी उनसे माफी मांग लेना। वापस चले जा घर, और यहाँ क्यों जिंदगी खराब करता है मुंबई में। और उसने कोई ऐसी व्यवस्था कर दी, उसको भगा दिया। अब जाते जाते उसने आखिरी में पूछा कि तुम नहीं आओगे क्या, तुम्हें भागने की इच्छा नहीं होती? तब उसने जो जवाब दिया भयंकर जवाब था, बोले कि मैं भी उसी डर से मैं घर से निकला था, लेकिन मेरे पिताजी लोहे का रॉड गर्म करके मुझे मारते हैं, बोले इसलिए मुझे यहाँ जो तकलीफ हो रही है मैं सहन कर लूंगा, लेकिन वहां नहीं जा सकता, बोले। तो ये हाल है मनुष्य पर्याय में बच्चों के, बड़ों के क्या हाल है वो सब स्पष्ट, मतलब आप एक एक उम्र की हालत देख लो मनुष्य जीवन की, तब पता चलेगा कि कितनी दुर्लभता से अपन यहाँ तक आए हैं जिनेंद्र भगवान की शरण में, और ये धर्म का उपदेश अपने को कितने महान पुण्य से सुनने मिल रहा है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय के दुखों का भी यहाँ स्मरण करते हुए ये बात विचार में लानी चाहिए कि बड़ी मुश्किल से अपन यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने को ये जीवन खराब नहीं करना है, जितना समय बचा है उसका सदुपयोग करना है। आगे की गाथा अगली बार। मनुष्य पर्याय के दुखों का वर्णन संसार अनुप्रेक्षा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार मनुष्य भव प्राप्त करके भी जीव संसार में दुख भोगता है। गाथा 46 है, कल पढ़ी थी अपन ने, उसके पहले शुरुआत 44 से हुई थी। लब्धि अपूर्ण नरो होदी, बड़ी मुश्किल से तिर्यंच पर्याय से निकला तो लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य हो गया। लब्धि अपर्याप्तक यानी जिसने पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की, यानी प्राण धारण करने की शक्ति भी जिसके अंदर नहीं थी, वहां एक मुहूर्त में 24 बार जन्म और मरण को प्राप्त हो जाता है वो जीव। सैनी पंचेंद्री हो तुम, और फिर बाकी जो गिनती है वो बतला ही चुके थे कल पूरे। 66,336 भव होते हैं एक मुहूर्त में, और 66,336 शुद्र भव कहलाते हैं। तो एक मुहूर्त में इतने भव हैं शुद्र भव, तो श्वास की गणना में अपन देखें तो एक मुहूर्त में श्वास का जो परिमाण है 3,773 है, तो एक श्वास में भव कितने होंगे 18। तो ये भव 18 एक इंद्रियों के निगोद के ही हों ऐसा नहीं है, सब मिलाकर के 18 भव होते हैं। एक इंद्री से पंचेंद्रिय तक अगर करें, और अगर सिर्फ एक इंद्री के देखें भव, तो लगभग 17 के आसपास आ जाते हैं एक श्वास में, और बाकी जो भव होते हैं वो 40 तो चतुरिंद्रिय जीवों के होते हैं, 60 त्रिंद्रिय जीवों के होते हैं, 80 द्विंद्रिय जीवों के होते हैं, और 24 पंचेंद्रिय जीवों के होते हैं, और फिर जो बचे हुए 66,132 या लगभग उतने ही जितने भव हैं जितने बाकी रह जाते हैं वो एक इंद्रियों के होते हैं। तो उनको अगर आप 3,773 से भाग दे दो तो वो लगभग एक श्वास में 17 के करीब आते हैं। दौलत राम जी ने स्थूल कथन किया है, एक श्वास में 8-10 बार काल अनंत निगोद मजार बीत्यो एक इंद्री तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म में हो सरो सहयो दुख भार। तो वो जो जन्म मरण 18 बार है वो निगोद संबंधी, यानी वो एक इंद्री संबंधी नहीं है, वो सब मिला करके है। स्थूल कथन होता है, कई बार क्या होता है कि बारीक अपने को निकालना पड़ता है आगम से कि इसका सूक्ष्म अर्थ क्या होगा, क्योंकि अगर पूरे 18 निगोद वाले को ही दे दो एक इंद्रिय को, तो फिर बाकी जो क्षुद्र भव हैं अन्य इंद्रिय वालों को द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय के, वो कहाँ जाएंगे फिर? और वो हैं चूँकि संसार में, इसलिए उसका निषेध भी नहीं है। तो 24 भव एक अंतर मुहूर्त में उसको धारण करने पड़ जाते हैं लब्धि अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय संबंधी। यहाँ तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य की बात है, तो लब्धि अपर्याप्त मनुष्य गर्भ से उत्पन्न होने वाला नहीं होता किंतु सम्मूर्छन होता है, नपुंसक वेद का उसको उदय रहता है और नियम से पर्याप्तियां पूर्ण करने के पहले उसका मरण होता है। मैंने ऐसी पर्यायें भी कितनी निकाल दी है जीवन ने, फिर उसके आगे अह गब्भे भी बचाए थे। मान लो कोई गर्भ में उत्पन्न हो रहा है तो गर्भ में क्या दुख सहन करता है, निवड़ी कयंग पच्चंगो, उसके सारे अंग सिकुड़े रहते हैं गर्भ में, वो हाथ पांव प्रसार नहीं सकता, फैला नहीं सकता, अंगड़ाई नहीं ले सकता, तो उतने लंबे समय तक के वो सिकुड़ करके वहीं गर्भ में रहता है। थोड़ी बहुत जो गति रहती है गर्भ में, बालक इधर उधर हिलता है, तो उससे उसको कहाँ संतुष्टि मिल सकती है। जैसे मान लो आप प्रवचन सुन रहे हैं तो थोड़ा बहुत हिल लेते हैं, लेकिन उठने के बाद ही आपको मतलब तसल्ली होती है। दृष्टांत देने पड़ते हैं कई बार, समझ में आ जाए आपको। और तिव्वम दुखम जोणीदो निगमनादो भी विसहदि, और जब जन्म धारण करता है तब गर्भ से निकलते समय जो उसको कष्ट होता है, उस तीव्र दुख की वेदना को भी वो सहन करता है। और आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि क्यों मरने से डरता है मनुष्य, डरने का कारण केवल इतना है कि फिर से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, और जन्म के समय जो दुख होता है वो इतना भयंकर है कि यहाँ से जिंदा रहूँ तो फिर बचा रहूँ उससे, ऐसा सोचता है कि जीवित रहूँगा तो फिर वहाँ गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, गर्भ में नहीं जाऊँगा तो जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं होगा तो वो तकलीफ नहीं होगी जो हुई थी, तो उस तकलीफ के डर से वो मरना नहीं चाहता। और मान लो जन्म हो गया, पुण्य का उदय नहीं है, तो आचार्य कहते हैं बालो विपियर चत्तु, माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, नहीं पालना, नहीं लेना जिम्मेदारी, छोड़ देते हैं। और पर उच्छिण वड्ढे दे दुहिदो, वो बेचारा दुखी मनुष्य, पर्याय में आया हुआ जीव, दूसरों की जूठन खा करके वृद्धि को प्राप्त होता है। अब खैर इसकी कल्पना करना तो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन आप उतने संवेदना में जाकर के अगर कल्पना करो तब जाकर के वो चीज़ आ सकती है अनुमान में कि क्या जीवन है उनका। बहुत बड़ा हृदय चाहिए उसको समझने के लिए, स्वार्थियों के बस की तो बात ही नहीं हो। मतलब इमेजिन करो, आप कल्पना करो कि कोई ऐसा जीव, अपन खुद रह चुके हैं, सब अपन कर चुके हैं संसार का नाटक, कोई ऐसा जीव जिसको माँ बाप ने त्याग दिया, वो कैसे बड़ा हो रहा है दूसरों की जूठन खा करके। अब ये घटना सुकुमाल चरित्र में भी आती है कि वो वायुभूति का जीव जिसने मुनिराज को गालियां दी थी, मर करके कई तिरियन जीवनियों में भटका, बहुत परेशान हुआ, और अगणित दुखों को उसने सहन किया। ऐसे ही यशोधर चरित्र में भी, वो यशोधर राजा का जीव जिसने आटे का मुर्गा चढ़ा दिया बलि में, वो भी कई तिरियन जीवनी में भटका, बड़ी मुश्किल से फिर उसका सुधार हुआ। और एक कथा इसमें रुक्मिणी की आती है कि शीतलनाथ भगवान के समय लगभग, वो सत्यभामा के जीव की कथा एक आती है, मुंड एक शयान माने एक ब्राह्मण था और उसने अलग अलग मतों का प्रवर्तन किया, 10 प्रकार के दान का उसने प्रवर्तन किया था, गोदान भूदान वगैरह से। और फिर जो रुक्मिणी का जीव था उसने क्या किया था, वो लक्ष्मीमती नाम की एक ब्राह्मणी थी और रूप उसका सुंदर था, तो एक बार किसी मुनिराज को देखकर उसके शरीर, उनके शरीर पर कुछ मल, जल और मल, मल तो नहीं, जल माने पसीने पर जो धूल चिपक जाती है वो लगी हुई थी, तो उस शरीर को मलिन देखकर उसको ग्लानी हुई, और वो उस समय दर्पण में श्रृंगार कर रही थी अपना, उसको दर्पण में मुनिराज का प्रतिबिंब पड़ा, ऐसे रास्ते से जा रहे थे मुनिराज, तो फिर उसने मुनिराज के सामने जाकर के अपशब्द बोले, और फिर दुनिया भर की बात है, रूप के मद में आकर के बोले कि तुम इतने क्रूप शरीर को लेकर नगर में घूमते हो नग्न अवस्था में, शर्म नहीं आती, ऐसे सब उल्टी सीधी बातें कही। और योग संयोग की बात ऐसी बन गई कि 7 दिन में उसको उदुम्बर कुष्ठ हो गया और पति ने घर से बाहर निकाल दिया कि मैं कोढ़न को नहीं रख सकता अपने घर पर। अब वो बाहर परेशान हो गई, कोई उसको बैठने नहीं देता था आंगन में, तो कहीं बाहर भी बैठना चाहते थे, लोग बोलते कि आगे बैठ जा। ये दुर्दशा हुई, फिर वहां से मरकर त्रियंच गति में उत्पन्न हुई, छछुंदर बन गई। और छछुंदर बनकर वो अपने उसी घर में पैदा हुई, और वहां पर जैसे बड़ी हुई उसने पति को जैसे ही देखा एक बार, तो उसको याद आया कि इसको मैंने पहले भी देखा है कभी, पहचान लिया, जाति स्मरण हो गया। जाति स्मरण हुआ तो फिर वो रागवश पति के पास आई, तो पति ने उसको पकड़कर जमीन पर पटक दिया, उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद फिर और त्रियंच योनियों में भटकी, फिर ले देकर बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली। तो पूती गंधा या दुर्गंधा नाम आपने सुना ही होगा, कई कथाओं में, रोहिणी कथा में कई कथाओं में ऐसे दृष्टांत आते हैं। दुर्गंधित शरीर वाली वो कन्या पैदा हुई, और फिर उसको सबने छोड़ दिया, उसका परिवार भी उजड़ गया, और उस कन्या ने फिर क्या करे, वो भीख मांगती थी या फिर दूसरे लोग जो खाना बच जाता था वो फेंक देते थे पीछे, उसको खाती थी। तो एक दिन अग्निभूति मुनिराज वहां से ऐसे निकले, और जैसे उस बच्ची को खाते हुए देखा तो मुनि होकर भी उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर अपने गुरु के सामने जाकर उनने आलोचना की कि गुरुवर, आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसी करुणा आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब गुरु जो थे सर्वाधिक ज्ञान के धारी सूर्य मित्र तद्भव मोक्षगामी मुनिराज थे, उन्होंने बोला कि जिसके प्रति तुम्हें आंसू आए हैं वो तुम्हारे ही भाई का जीव है। और उसकी ये जो करुण दशा हुई है वो मुझे गाली देने के परिणाम स्वरूप हुई है। तुम्हें याद है जब तुम्हारे घर मेरा आहार हुआ था, तब मैं लौटने वाला था आहार करके, तुमने आग्रह करके मुझे अपने भाई से मिलवाया। मैं जानता था कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन तुमने आग्रह करके मुझे उससे मिलवाया और वो भड़क गया। उसने जो अपशब्द बोले उससे तुम्हें तो वैराग्य हो गया कि गुरु को अपशब्द बोलता है मेरा भाई, धिक्कार है इस संसार को। तुमने दीक्षा ले ली, लेकिन तुम्हारे भाई की जो दुर्गतियां हुई हैं वो प्रचंड दुर्गतियां हुई हैं। आज वो उस कन्या के पर्याय में है और उसकी आयु मात्र कुछ घंटे शेष हैं। तो ये सब बातें होती है वहां पर, वो उसको उपदेश देते हैं। और फिर रुक्मिणी की कथा में भी बिल्कुल ऐसी बात आती है, वही मुनिराज मिल जाते हैं जिनको उनने मतलब रूप के मद में आकर के अपशब्द बोले थे, तो वही मुनिराज मिलते हैं। और फिर वो पूछती है कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है, तब मुनिराज उसको पुराने नाम से संबोधित करके बोलते हैं कि लक्ष्मीमती तुम भूल गई वो दिन जब तुम ब्राह्मण की पत्नी थी और तुम्हें रूप का अहंकार था, और एक दिन तुमने मेरे प्रति अपशब्द कहे थे। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन एक मुनि के प्रति अपशब्द बोलने के परिणाम ये निकले कि तुम्हारी दुर्गति हो गई है। कोई बात नहीं, दुख से छूटने का भी मार्ग है। और उसको एक व्रत दिया मुनिराज ने, उसने व्रत का पालन किया, और फिर कालांतर में आकर के वो राजा रुधिर की पुत्री रुक्मी की बहन श्री कृष्ण की पट्टरानी रुक्मिणी बनी। ऐसी रुक्मिणी की कथा थी। और वो जो जीव था अग्निभूति मुनि ने जिनको संबोधित किया था, क्या था कि सूर्य मित्र मुनि ने बोला कि उस कुछ घंटों की आयु बची है, तो वो चले गए उनको संबोधन देने। और संबोधन देने के कारण उसके मन के कुछ भाव शांत हुए, और जब भाव शांत हुए उसने उस समय आहार जल का त्याग कर दिया और फिर नमोकार मंत्र का स्मरण चालू कर दिया, और अग्निभूति वहाँ से मुनिराज लौट गए। और उस समय नाग शर्मा और उसकी पत्नी वगैरह सब नाग देवताओं की पूजा के लिए निकले थे, और पूजा का उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ कोई संतान जन्म ले। तो ये नमोकार मंत्र और आहार त्याग पूर्वक वहाँ पर बैठी हुई थी बच्ची, इसने निदान कर लिया कि मैं इनके यहाँ जा कर के बेटी बन जाऊँ। तो वो निदान कर, निदान का मतलब उस तप के बदले कोई फल की आकांक्षा कर लेना। तो तो उसने आहार जल का त्याग किया था, नमोकार मंत्र पढ़ रही थी, और फिर उसने ऐसा निदान कर लिया कि मैं इसके यहाँ पर बेटी बन जाऊँ, ये अच्छा ब्राह्मण दिखता बोले, इसके यहाँ सारी सुविधा होगी। तो ऐसी छोटी मोटी विभूतियों को देख करके लोग अपने जिस धर्म से स्वर्ग की संपदा मिल सकती है, जिस पुण्य से, उसको उसने इतने छोटे उसमें खर्च कर डाला। बच्चे के हाथ में 100 का नोट है तो फिर वो दुकानदार के पास जाकर बोलेगा कि एक चॉकलेट देना, क्योंकि उसको 100 के नोट में क्या क्या आ सकता है पता नहीं। इसी प्रकार अज्ञानी जीव धर्म से कितना लाभ हो सकता है ये न सोचते हुए धर्म के बदले छोटी मोटी तुच्छ वस्तुएं की प्रार्थना करता है, कामना करता है, ये अज्ञानता है। और धर्म के माध्यम से वो सांसारिक यश भी चाहता है कभी कभी कि देखो मैं धर्मात्मा हूं, मैं दानवीर हूं, मैं शास्त्रों का व्याख्याता हूं, या कोई भी ऐसे कुछ साधन बना करके वो उसमें यश में लगा देता है। लेकिन यश कितनी बड़ी चीज है, विचार करो, कहां तो 3 लोक का नाथ बना देता है धर्म, और कहां है 20-50 हजार लोगों में नाम कमा लिया धर्म के माध्यम से, कौन सा बड़ा तीर मार लिया, कौन सी उपलब्धि हो गई। तब फिर वो जा करके कन्या बनती इनकी, नागश्री नाम की कन्या होती, नाग शर्मा ब्राह्मण की। और फिर जब वो कन्या 8 साल की होती है तो वापस वो मुनि महाराज मिल जाते हैं। ये भी एक बड़ा विचित्र संयोग है, निकट भव्य जीव को कुछ ऐसे योग संयोग बनते हैं कि उसका रास्ता फिर आगे प्रशस्त होता जाता है। फिर वो मुनि महाराज मिल जाते हैं तो मुनि महाराज से व्रत ले लेती है। तो जो पिताजी थे ब्राह्मण, वो ऐसा गर्म होते हैं कि बोले कि तूने नंगे साधुओं से व्रत लिए। वो कन्या बोलती है कि पिताजी बहुत अच्छे व्रत लिए, आप सुन तो लो। बोले कि नहीं नहीं ये व्रत छोड़ो बोले। तब फिर मुनिराज ने उससे बोला था कि अगर तेरा पिता व्रत छोड़वाए तो वहां मत छोड़ना बोले घर पे, यहां मेरे पास आकर छोड़ना। अब वो नाग शर्मा जिद करने लगा कि छोड़ना ही पड़ेंगे तेरे को व्रत, डंडा उठा लिया उसने। तब फिर वो कन्या बोलती है कि गुरुजी ने बोला था कि अगर पिताजी व्रत छोड़ने को कहे तो छोड़ देना, लेकिन मेरे पास आकर। तब वो नाग शर्मा तैयार हो गया, ठीक है उनके पास चलो, मैं भी उनको फटकार लगाऊंगा, बोले कि पूछे बिना कैसे बेटी को व्रत दे दिया तुमने। फिर वो कथा बहुत लंबी मजेदार, जैसे अकृत पुण्य की कथा है ना, बस वैसे ही उस कन्या की कथा है। देखो अभी तो अकृत पुण्य की चालू है अपनी कथा धन्य कुमार की, आगे देखा जाएगा कैसा क्या उनका। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जूठन खा करके भी मनुष्य पर्याय में कई बच्चे पलते हैं, और एवं इसी तरह जायणशील भिखारी भी बन जाते हैं। भिखारी बनकर महादुखम कालम गमेदी, बड़े कष्ट के साथ अपना समय बिताते हैं। और कल हमने एक बताई थी घटना कि एक भिखारी का बालक था, हट्टा कट्टा था, मतलब उसके शरीर के अंग वगैरह सब ठीक थे, और किसी से वो मांगने लगा तो फिर उसने बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती, पूरा शरीर तुम्हारा ठीक ठाक है, मेहनत क्यों नहीं करते, काम नहीं करते, भीख मांगते हो। तब फिर उसने जवाब जो दिया था वो बड़ा रोंगटे खड़े करने वाला जवाब, बोले कि आप लोग हमें भीख नहीं देते इसलिए हमारे मालिक हमारे हाथ पांव काट डालते हैं। वो पूरा एक गिरोह रहता है उनका, और वो पूरा जो इकट्ठा होता है जितना द्रव्य दिन भर में, वो उनके हाथ जाता है मालिक के, और इनको जो कुछ मिलना है सो मिलेगा इनके कमीशन के रूप में। तो ऐसे भी भयंकर मनुष्य पर्याय संबंधी दुख जीवों को भोगने पड़ते हैं। और अब इसके आगे 47वीं गाथा है, पावेण जनो एसु दुःखम वसेन जायदे सवो पुनर्विकरे दिपावम नय पुण्यम कोवि अज्जेदि। एसु जनो यह मनुष्य, पावेण दुख कम वसेन पाप के कारण दुष्कर्म के प्रभाव से सब वो जाए दे, सब कुछ बन जाता है मनुष्य पर्याय में, भिखारी बन जाता है, नौकर बन जाता है, और जो कुछ हो सकता है मनुष्य पर्याय में वो सब कुछ बन जाता है पाप के कारण। लेकिन पावम पुनरवि करे, फिर भी पाप करता रहता है। देखो कैसी दास्ता है मनुष्य जीवन की, कि पाप के कारण मनुष्य सब कुछ बन जाता है, ठेला चलाता है। नागपुर में हमने देखा कि गर्मियों के समय नागपुर से कामठी तक 9 किलोमीटर तक वो हाथ ठेला लेकर के आदमी खींच कर ले जाते थे वजन। कैसे जाते होंगे 9 किलोमीटर इतनी गर्मी में जाना, और नागपुर की गर्मी भयंकर गर्मी होती है। वो हाथ ठेला लेकर खुद, जानवर नहीं है वहां पर कोई, खुद वो पशु के समान इतना वजन ढो करके जाते। अशुभ कर्म का उदय है, पेट पालना है, परिवार की भी रक्षा करनी है, कैसे करें, कैसे गुजारा हो, उनके पास फुर्सत नहीं है कुछ भी सोचने की, विचार करने की, चिंतन करने की। लेकिन बस दिन रात खून पसीना एक करके वो अपना गुजारा चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से पेट पलता है उनका। एक बार भोजन मिल जाए तो दूसरी बार भरपेट नहीं मिल पाता, दो बार किसी दिन मिल जाए तो समझते हैं कि आज हमारा नसीब अच्छा है। क्या दुर्दशा होती है जीवों की, पाप के कारण, दुक्कम वशेन, दुष्कर्म के प्रभाव से। अब वैसे तो पाप कहना पर्याप्त था, लेकिन दुष्कर्म वशेन ये साथ में और कह दिया। इसका मतलब ये है कि कोई गलत काम उसने किया है जिसका फल उसको भोगना ही पड़ रहा है, कोई चारा नहीं है। जिनको कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हो गई हैं, वो इस अनुकूलता को स्थाई न समझे, ये भी याद करा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ आप अनुकूल, पाप अनुकूलता में ही होते हैं ज़्यादा। बड़े से बड़ा पाप कौन करता है, पाप का फल भोगने वाला नहीं कर सकता। जिसके पल्ले में पुण्य होता है वही तीव्रतम पाप करने में सक्षम होता है। क्योंकि जिसका पाप उदय में है वो यदि पाप करना चाहे तो भी सफलता नहीं मिलती उसको। वो अगर किसी के यहाँ डाका डालना चाहे या चोरी करना चाहे तो पकड़ में आ जाता है, पाप कर्म का उदय है। और पुण्य का उदय हो तो आएगा क्या पकड़ में? पुण्य के उदय से उसको सफलता मिलेगी। और जितने पाप करने में सफल होने वाले लोग हैं वो सब किसी पुण्य के कारण ही सफल हो पा रहे हैं। इसलिए पुण्य का दुरुपयोग करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वैसे तत्वार्थ श्लोक वार्तिक में कर्मों के चार भेद बताए हैं, या जीवों के चार भेद समझ लो। एक पापानुबंधी पापात्मा, दूसरा पुण्यानुबंधी पापात्मा, तीसरा पापानुबंधी पुण्यात्मा, और चौथा पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा। आचार्य विद्यानंदी महाराज, उनका स्मरण करते हुए अपन बड़ी श्रद्धा के साथ इस बात का यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ये सारी चर्चाएं आ तो जाती हैं व्याख्यानों में, लेकिन कहाँ से ये बात उद्धृत है उसका उल्लेख नहीं हो पाता। मतलब ये हुआ कि जो बात आई है व्याख्यान में वो बात कहाँ से आई इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन इसको स्वाध्याय का दोष माना गया है, कि स्वाध्याय में आप जहाँ की जो बात कर रहे हैं उसका यदि उल्लेख नहीं करते तो आप दोषी हैं। क्योंकि सुनने वालों को, पढ़ने वालों को लगेगा कि आप कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, वो श्रेय आपको मिल जाएगा अच्छी बात करने का। जबकि वो अच्छी बात कहाँ की है, आपकी है क्या? तो फिर बता देना चाहिए जिसकी है, क्यों दूसरे का माल लेकर के अपने नाम से दे रहे हो, बता देना चाहिए। तो श्लोक वार्तिक में ये बात आती है, चार प्रकार के जीव हैं, इसका मतलब कर्म भी चार प्रकार के हो गए। एक तो क्या, पापानुबंधी पापात्मा, वो पाप का फल भोग रहा है और कर भी पाप रहा है, ठीक है ना। कई ऐसे गरीब लोग हैं जो अशुभ कर्म के उदय से ही गरीब हैं, लेकिन फिर भी नित्य नियम से मदिरा का सेवन करते हैं, क्या हो गया? पापात्मा है, और पापानुबंधी पापात्मा, यानी पाप का ही अनुबंध, संपर्क रखने वाले पापात्मा। अनुबंध का अर्थ होता है संपर्क, याद रखना इन शब्दों के जो अर्थ है ना, इन अर्थों को लोग ठीक से व्याकरण के हिसाब से नहीं लगाते और कहीं से कहीं भावार्थ को लेकर के भटक जाते हैं। अनुबंध का अर्थ क्या है? संपर्क। तो पाप का संपर्क कराने वाला जो पापी है या करने वाला जो पापी है वो पापानुबंधी पापात्मा है, यानी पिछले जन्म में भी पाप कमाया और आज भी पापों में लगा हुआ है। दूसरा कौन सा जीव है? पुण्यानुबंधी पापात्मा, जिसने पहले तो पाप किया था लेकिन आज पुण्य के संपर्क में आ गया है। जैसे ये उदाहरण अभी जो दिए थे हमने, दुर्गंधा पूति गंधा वगैरह के, कि इन्होंने पिछले जन्म में पाप किया था इसलिए इस जन्म में उनको फल मिल रहा था, लेकिन अब ये सत्संगति के प्रभाव से पापों को छोड़कर पुण्य में तत्पर हो गए हैं। ये पुण्य कोई हंसी खेल मत समझना आप, बातें पुण्य से ऊपर की करना आसान है लेकिन पुण्य तक जाना आसान नहीं है। तो पुण्यात्मा बनना कोई मामूली बात नहीं है, और फिर पुण्यात्मा भी मान लो बन जाता है कोई, तो पापानुबंधी पुण्यात्मा, पाप का संपर्क रखने वाला पुण्यात्मा, यानी पहले जन्म में तो पाप पुण्य किया है और पुण्य के फलस्वरूप सब संसार की सुविधाएं प्राप्त कर ली लेकिन पाप का बंध बांध रहा है। पांच इंद्रियों के सुख, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये पांच पाप, और सात व्यसनों में ही उसका टाइम पास होता है। और सात व्यसन कौन कर सकता है? पापात्मा नहीं कर सकता, क्योंकि पापात्मा के पास उतनी सुविधा नहीं हो सकती कि वो सातों व्यसन कर ले। जुआ खेल सकता है क्या? कैसे खेले जुआ? जुआ खेलने के लिए मूल पूंजी तो चाहिए, कुछ तो कहां से लाएगा वो? कुछ नहीं, उसके पास बिल्कुल कंगाल है। तो जिसके पास कुछ पल्ले में पुण्य है वही तो व्यसन करेगा। तो पुण्यात्मा तो है पूर्व जन्म की अपेक्षा, लेकिन पापानुबंधी है। पापानुबंधी यानी पाप का संपर्क रखने वाला, मतलब ये हुआ कि उसको पहले पुण्य से सब सुविधाएं मिल गई है लेकिन आज सद्बुद्धि नहीं मिली है, वो दुर्बुद्धि है, इसलिए व्यसनों में विषय कषायों में ही डूबा रहता है। और फिर ऐसे ही कुछ जीव कभी कभी धर्म क्षेत्र में आते हैं तो मंदिरों में भी सब सुख सुविधाओं का प्रबंध जमा लेते हैं। बुरा मत मानना, देखो कभी कभी बीच में हम थोड़ा सा चोटियां लेते हैं मंदिरों में पंखे कब से लगे हैं मालूम? ये चर्चा एक बार पहले भी छेड़ी थी, पर उस दिन कुछ लोग एब्सेंट हो गए तो आज वाले लोग सुन लेना। कब से लगे पंखे? 50-60 वर्षों के पहले पंखे थे क्या मंदिर में? कभी किसी मंदिर में, पूरे हिंदुस्तान के किसी जैन मंदिर में पंखे थे क्या? फिर ये कहां से आ गए? अब चर्चा ऐसी निकली कि अंदर एकदम उमस हो जाती है, फिर घुटन सी महसूस होती है इसलिए पंखा लगा देते हैं। अरे भाई, घुटन अगर होती है तो उसके लिए विज्ञान का दूसरा एक साधन और है, उसका उपदेश हमें नहीं देना चाहिए, लेकिन जानकारी आपको तो होगी, और नहीं होगी तो फिर आप पता कर सकते हैं। इस सभा में कुछ लोगों को है उस चीज की जानकारी कि वो क्या चीज है। उमस न हो, जैसे रसोई घर में आप लोग कभी कभी कुछ लगा देते हैं खिड़की पर तो अंदर की हवा बाहर जाती है, उसका नाम नहीं लेना चाह रहे हम, और फिर बाहर की शुद्ध वायु अंदर आ जाती है, लेकिन वो पंखे का काम नहीं करता, वो उससे सिर्फ वायु का शुद्धिकरण बना रहता है। तो आपको अगर अंदर उमस होती है तो फिर वो जो चीज आप लगा करके रखे हुए हैं वो कोई कंपल्सरी नहीं हुआ, उसके लिए दूसरे साधन भी है। और ये जो लगा रहे हैं पंखे, ये उमस उमस तो एक तरफ छोड़ो, आपको हवा की जरूरत है, और हवा ऐसी कि ये जैसे अभी ये जो हवा आ रही है ये कुदरती है, लेकिन ऐसी हवा जो आपको थोड़ा चैन पहुंचाए। आप माला फेरने के लिए उसके नीचे क्यों बैठते हैं ये बताओ पहले?
पहले ही हम बोल चुके बुरा नहीं मानना कोई।
अगर अपने को कोई ऐसी चीज मालूम पड़े जिसमें सुधार हो सकता है तो बुरा मानने की बात नहीं है, उसमें आप सुधार ला सकते हैं।